ओम शांति। आदरणीय उषा दीदी जी का हम सभी होली हंसों की सभा में हार्दिक स्वागत है। कोई नहीं, लगभग सभी दीदी को जानते ही है, क्योंकि दीदी को हम देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। फिर भी अगर कुछ नए भाई बहने हो तो मैं दीदी का थोड़ा परिचय जरूर दूंगी। दीदी जी 1974 में बाबा के ज्ञान में आए और 1980 में आपने अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा में स्वाहा कर दिया। शुरुआत में आपने अनेक अनेक बड़े बड़े शहरों में रहकर अपनी सेवाएं दी, फिर उसके बाद आप मधुबन में आए। मधुबन में तो कितने प्रोग्राम्स होते हैं आप सभी जानते ही हैं, राजयोग शिविर हो, बाबा मिलन के कार्यक्रम हो, विंग्स के कार्यक्रम हो, उन सभी प्रोग्राम्स में आपका प्रवचन जरूर रहता है। आप अपने पास जो खजाना है ज्ञान का, उन सब से, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी आत्माओं को भरपूर करते हैं। आपने देश विदेश में जाकर बहुत सेवाएं की है, बाबा का परचम लहराया हम ये कह सकते हैं। आपने अनेक टीवी चैनलों में भी दीदी के प्रवचन सुने होंगे। पॉलिटिकल विंग जो है हमारी, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और जैसे अपने रामायण महाभारत गीता तो सुनी ही होगी, लेकिन दीदी ने उन्हीं ग्रंथों को बाबा के ज्ञान के साथ जोड़कर इतनी सरल, व्यावहारिक और वास्तविक रूप से हम सभी के समक्ष रखा है, तो उसके लिए दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम दीदी जी से सुनेंगे कि संयम और नियम हमारा सुरक्षा कवच किस प्रकार है, किस प्रकार हम संयम नियम को धारण करें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो हम दीदी जी से आग्रह करते हैं कि आप हम सभी को लाभान्वित करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस साल की प्रथम भट्टी का प्रथम दिन, और आप सभी भट्टी के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बाबा के इस बेहद घर में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। और इस सीजन की ये शुभ शुरुआत सारे सीजन के लिए नींव बन जाएगी, आधार बन जाएगा। तो इसीलिए नींव का पत्थर बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना? ऐसी जिम्मेवारी अपनी समझते हो, क्योंकि आप जिस तरह के वाइब्रेशन वायुमंडल बनाएंगे, आने वाले ग्रुप्स भी उसी वाइब्रेशन और वायुमंडल के अंदर ढलते जाएंगे। वैसे तो बाबा का ये बेहद का घर, जहां इतने साल सभी बच्चों ने प्रभु मिलन का सुख लिया है, यहां के हर कण में वो वाइब्रेशन समाये हुए हैं, और वही वाइब्रेशन आप सबको भी अंदर से बल देता है। और आने वाले ग्रुप्स में भी ये बल भरता जाएगा। आज का जो विषय है संयम और नियम, ब्राह्मण जीवन के लिए क्या है सुरक्षा। ब्राह्मणों को सुरक्षा चाहिए या सुरक्षा देने वाले हैं? दूसरों को सुरक्षा देने वाले हैं या खुद को चाहिए, क्या कहेंगे? दोनों ही चीज है, खुद को भी चाहिए और देना भी है। ये दोनों बहुत जरूरी है वर्तमान समय में, और उसमें त्रिकालदर्शी बाबा जब संगम युग में इस संसार में अवतरित हुए तो कलयुग का प्रभाव क्या होता है बाबा बहुत अच्छे से जानते थे, और उसमें भी कलयुग के अंतिम समय का प्रभाव कैसा होगा वो जानी जाननहार सब कुछ जानता था। और इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने बच्चों को किस तरह से सुरक्षित करना है उसके लिए वैसी जीवन की मर्यादा, वैसे नियम संयम में बाबा ने बांध दिया। आरंभ में कई लोगों को कठिन भी लगे, कई लोगों ने सवाल भी उठाए, वहां तक कि बाबा को आकर के भी, साकार बाबा को भी आकर के लोगों ने सुनाया कि बाबा आपका ज्ञान इतना ऊंचा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आ रही है ना तो ये नियमों में आ रही है, ये नियम हटा देंगे ना तो इतनी भीड़ मच जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी पात्र आत्मा चाहिए जो पूरे कल्प के लिए नींव लगाए, है ना, सतयुगी दुनिया को जो स्थापन करे, ऐसी पात्र आत्माएं चाहिए। क्योंकि बाबा को सतयुग में इतनी भीड़ थोड़ी करनी है, भावार्थ ये कि शुरू से बाबा ने जहां नियम और संयम की बात आई वहां कहीं पर भी ढील नहीं छोड़ी, और आज तक भी इतना ही पक्के रहने के लिए बार बार मुरली के अंदर उन मर्यादाओं को, उन नियमों को, उन बातों को पक्का कराते रहे। एक है नियम, एक है मर्यादाएं। नियम में भी बाबा इतने ही पर्टिकुलर साकार में भी रहे, खुद भी हर चीज फॉलो करते रहे। बाबा ने स्वयं में भी कभी ये नहीं सोचा कि भई मैं नहीं करूंगा तो चलेगा, नहीं। बुजुर्ग होने के बाद 93 इयर्स की एज में भी बाबा हर नियम मर्यादा की पालना स्वयं भी उतना ही करते रहे, और बच्चों से भी उतना ही मजबूती से कराया। क्यों कराया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान जब कोई भी चीज अगर इतना ही स्ट्रांगली कह रहे हैं रोज की मुरलियों में भी, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, बहुत बड़ा रहस्य होगा, जिस रहस्य को समय आने पर जब वो पर्दा खुलेगा तब अनुभव करेंगे, और उस समय महसूस होगा और दिल से शुक्रिया बाबा का निकलेगा कि बाबा आपका बहुत थैंक्स, जो आपने हमसे इतनी ही मजबूती से ये नियम धारणाएं मर्यादाओं को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है ना। तो भगवान को जब कहा गया है जानी जाननहार, क्या जानता है बाबा? कई बार मुरली में कह देते हैं बच्चे, आपके अंदर क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता हूं, ना मुझे जानने की जरूरत है। समय आने पर बाबा वो भी जान सकते हैं, लेकिन उसके जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन के अंदर क्या है। कोई थॉट रीडर नहीं हूं, बाबा हमेशा ये बात कहते हैं, लेकिन फिर भी जब भक्ति मार्ग में उनको ये टाइटल दिया जानी जाननहार, तो क्या जानते हैं बाबा? समय को बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सा समय चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है, उसको बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। और उस समय में हर बच्चा सेफ रहे, ये भगवान की जिम्मेवारी है कि हम हर एक बच्चे उसके सेफ रहे माया के प्रकोप से, जिसके लिए गायन है शास्त्रों में कि चारों तरफ आग लगी थी और बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, उस आग में सेक तक नहीं आया। जो आज प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है कि आज चारों ओर अगर देखा जाए तो विकारों की आग, विकृतियों की आग, हर प्रकार की बुराइयों की आग बहुत बड़े रूप से लग गई है, और चारों तरफ ये आग होने के बावजूद भी भगवान के बच्चे उसमें सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि बाबा ने ये नियम मर्यादाओं की जो धारणा कराई है उसमें बाबा स्ट्रिक्ट रहे। नियम अर्थात दिनचर्या में जो जो बातें हमारे सामने भगवान ने रखी वो नियम में आता है। मर्यादा अर्थात जो धारणाएं हैं, और उसमें कहीं छूट नहीं दिया बाबा ने। नियम में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की हमारी जो दिनचर्या है, तो पहला नियम आता है कि बच्चे अमृत वेले अच्छे से पावरफुल रीति से शक्तिशाली याद के साथ करना है। हम सभी बच्चे अमृत वेले के नियम को ध्यान में रखते हुए उठ भी जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें कि क्या जितना शक्तिशाली होना चाहिए उतना शक्तिशाली रहा, या जो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि उस समय वैरायटी पोज हो जाते हैं बच्चों के, वैरायटी पोज में तो नहीं चले जाते हैं ना, कि हो जाता है कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई पीछे, अलग अलग पोज में चले जाते हैं। तो शक्तिशाली याद क्यों? क्योंकि ये वरदानी समय है, और वरदानी समय में बाबा सुबह सुबह वरदान देते हैं, बच्चों को सकाश देते हैं, और उन्हें ये याद का कवच पहनाते हैं, जिस याद के कवच से हम सेफ रहे। उस समय भगवान भाग्य विधाता के रूप में होता है, भाग्य खींचने की कलम आपके हाथ में दे देता है। जितना श्रेष्ठ भाग्य खींचना चाहो, जितनी श्रेष्ठ लकीर खींचनी चाहो, खींच लो, फ्रीडम है। लेकिन उस समय अगर आप सोचो कि हाथ में अगर पेन हो आपके, कलम हो और लिख रहे हो, और अचानक झुटका आ जाए तो लकीर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? अनुभव क्या कहता है? नीचे जाएगी। ऐसा हो जाता है ना, ऐसा तो हाथ भी ऐसा हो जाता है। अब भगवान ने आपको भाग्य की रेखा खींचने की कलम अमृत वेले पकड़ाई है, और आप बार बार झुटके मारते रहो तो बार बार क्या होगा? ऐसे खींच रहे हैं, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? और जितना नीचे जाएंगे तो सेफ्टी का कवच उतना पावरफुल नहीं होगा। अब सेफ्टी का कवच ही इतना पावरफुल नहीं है तो क्या होगा? फिर भगवान को नहीं कहना, अरे बाबा मैं तो अमृत वेला भी किया था, फिर भी मेरा भाग्य तो नीचे ही जा रहा है, इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, रोज विघ्न आ रहे हैं, रोज ऐसा हो रहा है, रोज। कारण क्या हुआ? गलती कहां हुई, बाबा की या मेरी? किसकी गलती है? हमारी अपनी गलती है ना, हमारी अपनी गलती है। इसलिए कहा कि ये समय वरदानी है। जब बाबा याद का कवच सारे दिन के लिए आपको पहना देते हैं, वरदानों से भरपूर कर देते हैं, कोई एक एक के ऊपर भगवान सारे दिन में चक्कर लगाते हुए आशीर्वाद नहीं देता जाएगा। सुबह सुबह में जो शक्तिशाली याद में बैठते, भगवान की दुआएं कहो, वरदान कहो सारे संसार के आप, लेकिन जो खींच सके, जितना खींच सकते हैं है ना, जितना ले सकते हैं अपने अंदर, समा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, और अमृत वेला पावरफुल हो उसके लिए रात को सोना सही समय पर सही विधि से हो, कि बाबा को याद करते हुए सारी दिनचर्या का चार्ट देते हुए, फिर बाबा को विधि सर गुड नाइट करते हुए, बाबा आपकी गोदी में हम आकर के हल्के होकर के सो रहे हैं, तब बाबा सुबह सुबह उठा भी देता है। नहीं तो कई बार उठा तो देता है, फिर भी बाबा बच्चों को और क्या सोचते हैं, 5 मिनट और वो 5 मिनट क्या हो जाता है, सीधा 5 बज जाता है, होता है ना ऐसा, 5 मिनट लेकिन सीधा 5 बजा तो सारा दिन जो उसका अफसोस, आज अमृत वेला मिस हो गया, आज अमृत वेला मिस हो गया। और अगर उस दिन की मुरली में अमृत वेले के लिए ही बाबा ने शिक्षा दी तो और मन खाता कि बाबा ने आज देखो मेरे को पकड़ा ना, अच्छे से पकड़ा, आता है ना मन में। अब सोचो कि ये जो पश्चाताप होता है, एक दिन अमृत वेला मिस करने की सजा नहीं कहेंगे, है कि नहीं? इसीलिए नियम को नेमीनाथ बनकर के नहीं, लेकिन उस वैल्यू को समझते हुए उसको धारण करना, उसका पालन करना। दूसरी बात, अमृत वेला क्यों बाबा करने के लिए कहते हैं। कई लोगों को ये बार बार आता है कि बाबा 5 बजे उठाते थे, 6 बजे उठाते थे, 4 बजे, और जो खास करके नए नए होते हैं तो उनको लगता है आधी रात में उठना पड़ता है। ये बड़ा दिक्कत वाला है, बड़ा कठिन लगता है। और कई लोगों की ये भी शिकायत होती है नहीं उठ पाते हैं, हमारी दिनचर्या के कारण या इतने जन्मों के संस्कार के कारण। लेकिन कोई भी चीज की अगर वैल्यू समझेंगे ना, उसके महत्व को समझेंगे, तो कैसे भी करके उठना सहज हो जाएगा। ये अमृत वेले उठने के लिए बाबा कोई दुख देने के लिए नहीं कहता है कि भगवान दुख देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि आप देखेंगे दुनिया भर के अंदर, सारी दुनिया में जितने भी भूकंप आते हैं ना, कौन से टाइम पर आते हैं? रहस्य को समझना, सेफ्टी का साधन कैसे है कि कोई भी भूकंप सारी दुनिया में, अभी टर्की में भूकंप आया, कितने बजे आया? कितने बजे आया? 4 बजे आया। 4 बजे से लेकर के या 2:30-3 बजे से जब हमारा अमृत वेला शुरू होता है, तब से लेकर के 7-7:30 के बीच में ही सारे भूकंप आते हैं। नोट कर लो, आप नोट कर लो। और देखा गया है कि जो बच्चे उस नियम का पालन करते हैं तो सहज ही, जो कहा जाता अंत मते सुगति, आप सोचो जो सोए पड़े थे टर्की में, उसी में ही शरीर छोड़ा, और छोड़ते हुए पता नहीं कैसी उनकी मनस्थिति होगी, जिस कारण भटकना पड़ा होगा उन आत्माओं को। तो बाबा कहे तुम अंतिम समय अगर योग में बैठे हो, भूकंप भी आया तो क्या होगा? बाबा की याद में सहजता से शरीर छोड़ेंगे और श्रेष्ठ गति को प्राप्त होंगे। जो भगवान की याद में शरीर छोड़े तो उनकी गति कितनी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, गुजरात का भूकंप कितने बजे आया था? 7 बजे आया था। इसलिए कहा जो सुबह का समय है, जो बाबा ने हमें नियम मर्यादा, तो उस समय हम सभी क्लास में होते हैं। अच्छा, क्लास में भूकंप आया तो क्या हुआ? बाबा की याद में ही थे, मुरली सुन रहे थे, ज्ञान अमृत का पान कर रहे थे। दुनिया की आत्माएं कुछ सोई हुई थी 8 बजे तो, या कोई उठे हुए थे, लेकिन उठकर के ही जैसे ही हड़कंप हुए तो कैसी मनस्थिति थी, है ना? तो गति नहीं होती है उन आत्माओं की, श्रेष्ठ गति नहीं होती है। तो बाबा चाहता है कि बाबा के हर बच्चे की श्रेष्ठ गति हो। कोई भी भगवान को ये उलाना ना दे कि बाबा आप तो सब कुछ जानते थे, आप अगर हमें कहते थे तो हम नहीं करते थे क्या? अगर भगवान अमृत वेले का नियम नहीं बनाता, सुबह सुबह मुरली क्लास का नियम नहीं बनाता, जैसे दुनिया में संत लोग शाम को करते हैं सत्संग या दिन में करते हैं, 2 बजे के बाद अक्सर महात्मा सत्संग करते, सुबह सुबह कौन करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता है। सब दोपहर को 2 बजे के बाद उनके सत्संग चालू होते हैं। अगर भगवान भी अगर ऐसे ही चलाता था हमको, शायद हम कंफर्टेबल फील करते थे कि हाँ भाई, सारा कारोबार पूरा करने के बाद शांति से बैठ के सत्संग करे। लेकिन जिस समय अगर सुबह सुबह ऐसे भूकंप आए और उसमें शरीर छोड़ना पड़े और आत्मा की गति न हो, तो ऊपर जाकर हम भगवान को क्या कहते थे? प्रभु आप तो सब कुछ जानते थे, फिर अगर आप सुबह सुबह करते थे तो हम नहीं उठते थे क्या? हम जरूर उठते थे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सेफ्टी का साधन कैसे है? क्या आप अंतिम घड़ी भगवान की याद में प्रेम से, सहजता से, शरीर से डिटैच हो जाओ और श्रेष्ठ गति को प्राप्त करो? ये भगवान चाहता है, इसलिए अमृत वेला उठाता है। और जब अमृत वेले में आप उसी अवस्था में, या जैसे कहा मुख में ज्ञान अमृत हो, और तब प्राण तन से निकले, गंगा का तट हो, मुख में ज्ञान अमृत हो और तब प्राण तन से निकले, तो कैसा होगा? उसके जैसा सुहावना मौत और कोई हो सकता है? तो इसीलिए ये याद रखो, भगवान किसी को सुबह सुबह उठा करके दुख देना नहीं चाहता है, लेकिन इसके पीछे ये रहस्य है। कोई भी नेचुरल कैलामिटीज में भी, विशेष धरती की जो हलचल है वो सुबह सुबह ही होती है, 2:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही होगी। आप कहीं पर भी रिकॉर्ड देख लो, दिन में जो आता है वो इतना नहीं आता है। लेकिन क्योंकि रात्रि के समय जैसे ही कहो ठंडक हो जाती होगी या जो भी हो, जिस कारण से जो प्लेटें हैं पृथ्वी की वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती, इसीलिए खिसकती है, इसीलिए सुबह सुबह आता है। ये साइंस है, ये विज्ञान है उसके पीछे। तो इसीलिए अमृत वेला मुरली क्लास क्यों बाबा कहते करना ही है, कंपल्सरी है। आप गॉडली स्टूडेंट हो चाहे बाबा अलग अलग रूप से नशा चढ़ाते हैं हमें, ताकि बच्चों के अंदर उमंग उत्साह आए और खुशी से करें। मजबूरी से नहीं करना है, खुशी से करना है। और इतना खुशी से हम मुरली भी बाबा की सुने जो बस जैसे बाबा कई बार कहते हैं, हर वक्त ये समझो कि यही अंतिम घड़ी है। और अंतिम घड़ी ऐसे बाबा की याद में मुरली ज्ञान अमृत पीते पीते योग अग्नि लगाते हुए, आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा, ऐसे में शरीर छूटे तो कैसा लगेगा, कितनी आत्मसंतुष्टि होगी उसमें, है ना? तो इसीलिए सुबह की मुरली, कोरोना काल में भगवान ने साइंस के साधन दिए ताकि आपकी मुरली मिस ना हो और सुबह सुबह में ही आप मुरली सुन लो, है ना? ये बहुत अच्छा था कि आपने उस बात को फॉलो किया, मुरली कभी मिस नहीं किया। लेकिन अब तो कोरोना काल पूरा हो गया ना, अब आपकी रियल परीक्षा है कि अभी भी वही मोबाइल पर सुनते हैं या क्लास में आते हैं, क्या करते हैं? तो वो जो सुनते हैं काम करते हुए, खाना बनाते हुए, टिफिन बच्चों का उनको तैयार करते हुए मुरली जो सुनते हैं, ये नेमिनाथ हो गया, क्योंकि उसमें धारणा नहीं होती है, सुन लिया, हाँ बस नेमिनाथ बनकर के नियम पालन कर लिया, लेकिन उससे ग्रहण शक्ति नहीं होती है। और ग्रहण शक्ति जितनी आपकी अच्छी क्लास में होती है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है, तो यहां बैठ करके जो एकाग्रता से सुनते हैं और धारण होती है, तो ये धारण करने से और हम अंदर से मजबूत होते जाते, शक्तिशाली होते जाते, सशक्त होते जाते हैं, जो हमारी अवस्था को सारे दिन के नेगेटिव एनवायरमेंट या नेगेटिव वायुमंडल में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मुरली क्लास, जब मुरली क्लास में बैठ करके सुन करके एक एक पॉइंट को नोट करके उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, और उसी रीति से सारा दिन अगर वो स्थिति हमारी बनी रहती है, तो क्या होगा, व्यर्थ की बातें मन को प्रभावित नहीं करेगी, मन को सुरक्षित रख सकेंगे। मन के लिए सेफ्टी का साधन ये ज्ञान अमृत है, जिसका यादगार भक्ति में उन्होंने वो चरणामृत बना दिया। लेकिन चरणामृत से तो कोई सेफ्टी नहीं होती है, सेफ्टी होती है ज्ञान अमृत से, और वो भी सेफ्टी देनी है किसको? हमारे मन को। आज दुनिया के अंदर लोग इतने डिप्रेशन के शिकार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनके पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छा खुराक नहीं है मन को देने के लिए। इतनी फालतू बातें हैं, इतनी नेगेटिव बातें हैं, और वो नेगेटिव बातें ही जितना उस पर मन चिंतन करता जाता है तो धीरे 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 इतने नेगेटिव विचार बढ़ जाते हैं जो फिर अच्छा सोचने की ताकत नहीं है तो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। तो ये मुरली क्लास सुबह सुबह में, क्योंकि जब उठ करके फ्रेश होकर के आप मुरली सुनते हैं तो वो ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, और भले दो लाइन चली गई, लास्ट का वरदान चला गया, स्लोगन चला गया, सार चला गया, प्रश्न उत्तर चला गया, इतना भी चला गया और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते रहे कि ज्ञान अमृत और योग अग्नि क्यों है, उससे क्या क्या होता है, उस पर ही चिंतन करो। ये दो लाइन ले लो, ज्ञान अमृत और योग अग्नि, उसके ऊपर चिंतन करना चालू करो, देखो कैसा आनंद आता है। तो बुद्धि और मन को खुराक कोई अच्छी चीज का मिलता है तो सशक्त होने लगता है, तो वो नेगेटिविटी से बच जाता है, सेफ्टी हो जाती है उसकी, सुरक्षा हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, दिन भर के सारे दिन के कारोबार करने के बाद, दिन भर के बाद आप सत्संग करने जाओ, वो इतनी ग्रहण शक्ति नहीं होती है, कारोबार घूमता रहता है अंदर में, अच्छा ये बाकी रह गया, ये काम भी बाकी रह गया, वो रह गया, है ना, वो चलता रहेगा। तो मुरली जिस तरीके से, जो सुबह सुबह फ्रेशनेस होती है और उससे जो ग्रहण शक्ति, उससे मन को जो खुराक मिल गया अच्छे विचारों का, ये हमें कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं बनाएगा, हमारी सेफ्टी है। इसलिए बाबा ने कहा सुबह सुबह मुरली सुनना है, है ना, सुबह सुबह मुरली सुन लो, हेल्दी भोजन मन को दे दो। आप देखेंगे कई डिप्रेशन वाले भी जब बाबा के घर में आकर के रोज मुरली, भले शुरू शुरू में उनको अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, नींद भी आती है, लेकिन फिर भी आते रहे, तो एक दिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर निकल आए, ऐसे भी देखने को मिले। तो मन की सुरक्षा है। अच्छा, उसके बाद और कौन सा नियम है? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल का। ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने क्यों दिया है, क्यों कहा कि बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो? क्योंकि आप सभी प्रवृत्ति में रहते हैं या जो सेंटर्स पर रहते हैं, कभी कभी कोई बात को लेकर के इमीडिएट डिसीशन लेना होता है, और डिसीशन कभी कभी हम किसी बात के प्रभाव में आकर के लेने लगते हैं। किसी ने बात को इतना अच्छा बनाया और बना करके ला करके हमारे सामने रखा कि आप ये डिसीशन ले लो, और आप लेने ही जाने वाले होते हैं कि उतने में ट्रैफिक कंट्रोल बजा, उसको बिका, दो मिनट शांत रहो, बाबा को याद करो। और बाबा को जैसे याद करते हैं, और याद करते ही बाबा की टचिंग आपको ये मिली, नहीं ये डिसीजन नहीं लेना है, नुकसान है। और आप ट्रैफिक कंट्रोल के बाद उसको कहते हैं, भाई थोड़ा सोचने का टाइम दो, सोच करके आपको बता, कल बताएंगे। और क्या होगा, जब वास्तविकता पता चलती है तो आप कहते हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल ने गलत डिसीजन लेते हुए बचाया, सुरक्षा। बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले थे, क्योंकि आप ट्रस्टी है, चाहे भगवान के घर के, चाहे अपने प्रवृत्ति में रहते हुए भी ट्रस्टी है, तो कहीं बाबा का जो धन है वो कहीं गलत उसमें न चला जाए, तो बाबा टचिंग तो करेगा। और इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल होते ही बाबा की टचिंग मिलते ही मना हो गया। और जैसे ही मना हुआ और आपने कहा सोच के जवाब देंगे, तो बस उसमें मार्जिन मिल गया आपको और आप बहुत बड़े नुकसान से बच गए। ये बाद में फील होता है कि बच गए, है ना? तो इसीलिए जो है ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम भी सुरक्षा प्रदान करते हैं आपके धन को, या कोई ना कोई गलत डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो ट्रैफिक कंट्रोल के महत्व को नहीं जानते हैं, क्या होता है, डिसीजन ले लेते, बाद में पश्चाताप करते, फिर बाबा को याद करते, बाबा आपने टचिंग भी नहीं किया, आप तो रोक लेते थे मेरे को, बाबा कहते तुमने याद किया, याद करता था तो मेरी टचिंग को कैच करता था, मैं तो टचिंग दे रहा था लेकिन तुम्हारी बुद्धि एंगेज थी, क्या करेंगे। तो बहुत बड़े धन के नुकसान से भी, क्योंकि डिसीजन जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है उसमें धन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, उसमें बच जाएंगे, है ना? मुझे याद आता है एक भाई ने अपनी बहुत सुंदर बात सुनाई, अनुभव सुनाया, और उसने कहा विदेश से वो यहां इंडिया में आ गए, अब इनका पैसा विदेश में था, विदेश में होने कारण जब भारत सरकार ने कहा भाई डिक्लेयर करो या तो आप यहां ले आओ, तो फिर उसने सोचा कि सारा पैसा मंगा लेता हूं। अब उसका पैसा जो आया डॉलर पाउंड में आया, तो फिर जो है उतने में किसी ने कहा कि भाई आपको अगर डॉलर चाहिए ना, ये व्यक्ति के पास आया होगा, ये विदेश से आया है, उसके पास जरूर होगा, देखो पूछो उनसे। वो आया, भाई मेरे को जरूरी काम है और मुझे डॉलर की जरूरत है बहुत, मैं उतना रुपया यहां दे दूंगा आपको, बस मेरे को डॉलर दे दो, मैं उतना रुपया यहां दे दूंगा, और उसके बावजूद और एक चीज कुछ देने के वायदा किया। उस भाई ने सोचा कि नुकसान तो है नहीं, मैं बैंक से चेंज कराऊं या किसी से चेंज कराऊं, तो चेंज तो कराना ही है मुझे। उतने में उसकी पत्नी जब आई और उसने ये बात सुनी, तो उसकी पत्नी ने बाबा को जैसे याद किया कि बाबा ये सौदा करने जा रहे हैं, क्या करें, सही है गलत है, और बाबा का इशारा उसने कैच किया गलत है, रोक लो। वो बाहर आकर के कहने लगी अपने पति से कि कल जवाब देना, इतना जल्दी क्या है, है ना? फिर वो भाई ने कहा ठीक है आप सोच लो अच्छे से फिर जवाब देना। उसको लगा ये तो दे ही देंगे, वो भाई तो कन्विंस हो गया है। और फिर जब चले गए तो दोनों हस्बैंड वाइफ की थोड़ी बोला चाली हुई। हस्बैंड ने कहा बिजनेस की बात है, तुम क्यों बीच में बोलती हो, तुमको बोलना नहीं चाहिए, तुमको पता है क्या क्या रेट चल रहा है, वो अच्छा रेट भी दे रहा है, ऊपर से ये चीज भी दे रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कुछ भी हो बाबा के सामने चिट्ठी रखो, बाबा अगर हां करे ना फिर करना। जैसे बाबा के सामने चिट्ठी रखी अमृत वेला, बाबा ने मना किया, तो भाई निश्चय बुद्धि तो था, बाबा ने मना किया, जरूर इसमें कोई कारण होगा। तो जैसे ही मना किया, अभी दूसरे दिन वो आएगा तो क्या जवाब देंगे, तो इसको फोन करके बोल दिया उसने कि भाई एक दो दिन और देना मुझे सोचने के लिए। भले हाँ हाँ बोले, भले सोचो आप। उतने में उनके घर में उनका भाई आया और भाई के साथ एक उसका दोस्त आया। वो दोस्त जो था ये फॉरेन की करेंसी में डील करता था, तो उसको पूछा ऐसे ही जैसे उसका परिचय हुआ कि भाई ये फॉरेन की करेंसी में डील करता है, तो उसको पूछा कि भाई ऐसा कोई अगर सौदा लेकर आए तो करना चाहिए नहीं कर, बोले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा क्यों, उतना पैसा तो मैं चाहे बैंक से ले, चाहे बोले नहीं आपके पास चेक में होगा, बोले हाँ चेक में है। तो आप चेक में अगर देंगे तो आपका नाम होगा, और जब वो चेक जमा करेगा तो आपका नाम से जमा होगा। गवर्नमेंट में जाएगा तो ये तो ब्लैक का मनी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया एक प्रकार का। तो दूसरे दिन आपके घर पर रेड पड़ेगी, रेड पड़ेगी आपके घर में। तब उसको होश आया कि इतने बड़े नुकसान से बच गया, नुकसान से बच गया। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो वो एक सेकंड जब बाबा को याद करते हैं, बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पड़ता है, और जैसे ही बाबा की टचिंग होती है और आप कई गलत डिसीजन लेने से रुक जाते हैं। और एक नियम, बैज, बाबा हमेशा कहते हैं ये आपका मेडल है, मेडल सदा लगा रहना चाहिए। चाहे भले आप रंगीन कपड़ा भी पहनो, लेकिन अगर बैज लगा होगा ना तो कई रीति से सेफ्टी है, कई रीति से सेफ्टी है। बीच में एक किस्सा सुना, पता नहीं ये आसाम साइड में जो ये होते हैं नक्सलवादी, एक बस जा रही थी उसमें अपना एक बीके भाई जा रहा था, तो बस को रोका, किडनैप किया, सबको कहा सोना चांदी जो है उतार कर दे दो, सबने उतार दिया। ये भाई के पास और कुछ तो था नहीं, बस घड़ी थी, एक अंगूठी थी, वो निकाल दिया और बैज पड़ा था उसको। तो बैज को देख करके उन लोगों ने कहा ये क्या है, ये भी दे दो। कहा नहीं ये नहीं दूंगा, चाहे जान ले लो लेकिन ये नहीं दूंगा। ऐसा क्या है, ये तो भगवान का ही चित्र है, तू दे दे ना। कहने ये नहीं दूंगा, तुम भले मुझे मार डालो, ये नहीं दूंगा। पता नहीं उसके दृष्टि में देखते हुए उन लोगों को क्या अनुभव हुआ, या बैज को देखते हुए क्या अनुभव हुआ, जो उसको छोड़ तो दिया लेकिन जो इकट्ठा किया था सबसे वो भी छोड़ के भाग गए। क्या अनुभव बाबा ने कराया ये बैज ने, है ना। ये बैज ऐसी चीज है जो कभी भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, अक्सर लोग निकाल के जाते हैं, लेकिन जो पहन के जाता है सामने वाला देख करके अच्छा अच्छा ओम शांति के हो, तो ओम शांति के है माना ये वैल्यूज को पालन करने वाला है, ये कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। उनको नौकरी बिना उसके कागज देखे नौकरी मिल जाती है, क्योंकि ये ओम शांति में जाता है। ये भी है भावार्थ ये कि बाबा के एक एक नियम जो है वो बहुत मदद करते हैं, हर रीति से हमारी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद जो मर्यादाएं हैं, जैसे सबसे पहली नंबर वन मर्यादा है हमारी पवित्रता, ब्रह्मचर्य। आज की दुनिया के अंदर भी अभी तक भी लोग कहते हैं कि अरे ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये भाई बहन बना देते हैं, कहते हैं ना भाई बहन बना देते हैं। आज तक हम लोग भी युक्ति युक्त जवाब देते थे, कह रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ये शादी करने नहीं देंगे, आपको भाई बहन बना देंगे, आपको गृहस्थ जीवन से हटा देंगे, आपका गृहस्थ बिखर जाएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जो हम खुल करके ये कहते कि हाँ हम भाई बहन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जैसा पवित्र संबंध और कोई नहीं है, है ना। और इसी के लिए ही जीवन के अंदर आज देखो दुनिया के अंदर गृहस्थ धर्म में रहने वाले भी बताते हैं कि कितनी बाहर में गंदगी है, गृहस्थ जीवन में कितनी गंदगी है, किस तरह से संबंधों का लिहाज भी नहीं रहा, वो मर्यादा भी नहीं रही, ऐसी गंदगी आ गई है। इससे तो अगर भाई बहन बनाते तो अच्छा ही है ना, वो गृहस्थ कितना अच्छा सुंदर चलता है, तो हमें अभी डर नहीं है कि हम पवित्रता के नियम को बहुत सिंसियरली पालन करते हैं, इस नियम को बहुत दृढ़ता पूर्वक इस मर्यादा में चलते हैं, ये कहने में हमें कोई, क्योंकि कोई गिरा हुआ कार्य नहीं है, ये कोई गिरा हुआ काम नहीं कर रहे हैं। आज गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत सुख शांति संपन्नता सहजता से आ जाती है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं पवित्रता जननी है सुख शांति की। तो जहां पवित्रता होगी सुख शांति उस घर के अंदर स्वाभाविक आ जाएगी, जहां अपवित्रता होगी वहां दुख शांति ही होगी, ये गारंटी है। और इसलिए हमें कोई अफसोस नहीं है ये कहने में कि हां हम ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के चलते हैं, ये हमारी सबसे पावरफुल मर्यादा है। ये मर्यादा हमें हर रीति से सुरक्षित रखती है। जितना ये मर्यादा में दृढ़ है, आज देखो दुनिया के अंदर हजार प्रकार के रेप के केस होते हैं, किस किस तरह के रेप के केस होते हैं, और बाबा के बच्चे अभी तक सेफ है। कभी कोई किस्सा सुना, कभी कोई किस्सा सुना आपने? ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति ही एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है, ये पवित्रता की धारणा एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है जो दूसरों को देवी का साक्षात्कार होता है और वो भाग जाते हैं, वो ठहर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा कि आज की दुनिया इतनी गंदी है, कोई मर्यादा नहीं, जहां पर कोई लिहाज नहीं संबंधों का, इतनी गंदगी आ गई है जहां लोगों की वृत्तियों में, उसमें अगर सेफ्टी का साधन है तो यही ब्रह्मचर्य व्रत आपको सेफ रखता है, आपको देवी या देवता का साक्षात्कार लोगों को कराएगा। ब्रह्मा बाबा को जब मारने के लिए आया था, उसको अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ था। ऐसे कई बहनें, हमारी एक बहन गुवाहाटी से पता नहीं कहां जा रही थी और रास्ते में अचानक ट्रेन रुकी, काफी लुटेरे अंदर घुस गए और एक एक को बंदूक दिखा दिखा कर किडनैप करना चालू किया, और जैसे जैसे कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट होकर के एक एक के पास आते गए, और वहां अपनी बहन सुबह सुबह अमृत वेला योग कर रही थी, और जैसे योग कर रही थी वो जैसे आए, एक ऐसी साइलेंस की और ऐसी एक पवित्र वाइब्रेशन ट्रेन के अंदर उन्हें महसूस हुए, वहां से वो आगे नहीं जा सके, पीछे मुड़ करके निकल गए, पीछे मुड़ करके निकल गए। ये है ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत। जो बाबा ने कहा कि आप गृहस्थी जब इसका पालन करते हैं तो आने वाले समय में, भगवान की ये भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बड़े बड़े महात्माओं को आपके चरणों में झुकाएंगे कि हमने तो गृहस्थ छोड़ दिया, उसके बावजूद भी हम पवित्रता को इतनी सूक्ष्मता से पालन नहीं कर सके, अपनी वृत्ति में पालन नहीं कर सके छोड़ करके भी, लेकिन आप लोग महान हो और आपके चरणों में गिरेंगे कि आग और कपूस इकट्ठे रहने पर भी आग नहीं लगती है, तो ये परमात्मा शक्ति के अलावा और कोई ताकत नहीं है। तो भगवान की शक्ति का परिचय यही मर्यादा देती है और आपको हर रीति से सुरक्षित रखती है। दूसरी मर्यादा भोजन की, लेकिन आज की दुनिया में अभी धीरे धीरे भोजन के प्रति क्या हो गया, थोड़ा मशीन मेड है, सब मशीन मेड है, चलता है। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है हमारा? दुआओं का, दुआओं का सुरक्षा कवच जो है बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी आपको सेफ कर देंगे। लेकिन जिसका घर परिवार टूटेगा ये शराब पीने के उस नशे में आने के कारण, जिस भी परिवार में मारपीट होगी, अब जिस परिवार में मारपीट हुई या जो भी हल्ला मचा या तूफान हुआ या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, अब उस घर के अंदर से आपको दुआएं मिलेगी या बद्दुआएं मिलेगी। भाई जिसने भी पिलाया उसका सर्वनाश हो यही निकलेगा अंदर से। मैंने कहा आपका परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है। उसने कहा मैं अभी उसी मीटिंग के लिए जाने वाला हूं यहां से दिल्ली, मैं ये सौदा कैंसिल कर दूंगा कि आप चाहे मेरे से ये जो परमिट है वो भले ले लो चाहे तो, लेकिन मैं इस सौदे में नहीं जाऊंगा। अब आप बताओ मशीन का पिए कितना सुरक्षित है। ये खुद उसने अपने मुंह से बोला ताकि उनके अंदर एक एडिक्शन हो और वो वही पिए के लिए जाए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालने में क्या जाता है, वो मुझे कह रहा था थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालेंगे क्या जाता है। अब आप बताओ कितना सुरक्षित है ये मशीन का, कितना सुरक्षित है। ये सुनने के बाद तो मन में आया कि सचमुच दुनिया पैसे के लालच में क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, बताओ है इसका कोई उपाय है। अब हम कहते हैं हम नियम धारणाओं में मजबूत है, बाहर का खाते खाली मशीन का ये खा लेते हैं या पी लेते हैं, अब क्या होगा, सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगी। अच्छा उसकी परमिट कैंसिल कर देंगे, जिनको डालना ही है वो किसी और को परमिट दे करके डलवाएगा नहीं। दूसरा, बाबा ने हमें ये मर्यादा जो खान पान की दी है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य ये है कि आने वाले समय में, और भी आज भी आप लोग सुनते हैं, आप तो गृहस्थ में रहते हैं, रोज के नए नए किस्से कहानियां सुनते हैं कि किसी को खिला दिया कुछ और खिला करके उसको लूट लिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, उसका सारा अपने वश में करके उसके पीछे पीछे चल पड़े, है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है। खिला करके इंसान को क्या नहीं कर सकते हैं, किसी को खिलाने में ही तो जहर मिला करके मार डालते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जिसको मार डाला, किस लिए, जहर मिला करके, और एक विश्वास के साथ कि ये तो कुछ नहीं करेगा, ये मैं खा लेता हूं, है ना, और खा लेने के बाद क्या हुआ। तो भावार्थ ये कि बाबा तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं आने वाले समय में। इतना आज दुनिया के अंदर तंत्र मंत्र जंत्र की विद्या का प्रयोग हो रहा है, बाबा नहीं चाहते हमारे बच्चे इसके शिकार बने। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कहीं बाहर का कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि बाबा आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं किया। आप जब उस पथ पर चले ही नहीं, उस पथ पर चले ही नहीं जो पथ भगवान ने दिखाया, फिर भगवान को दोष कैसे दे सकते हैं। अगर भगवान ने जो मर्यादाएं दी उस मर्यादा पर आप व्यवस्थित चलते रहे तो सुरक्षा होगी या नहीं होगी, सेफ्टी होगी या नहीं होगी। इसीलिए कहती हूं कि आप अपने जीवन को ये मत समझो कि बाबा ने ऐसे कड़े नियम क्यों बना दिए। हर एक नियम मर्यादा के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो अंत में आपको पता चलेगा। अभी बस उसको फॉलो करो, आप फिर देखो अनुभव होगा और अनुभव होगा कि किस तरह से सचमुच बाबा ने आपकी सुरक्षा की है। इसीलिए ये नियम मर्यादाएं ये हमारे सेफ्टी के साधन है। तो ये तीन कवच जो बाबा ने दिए हैं उसको सदा ध्यान में रखना। पहला कवच हमारी अपनी पवित्रता की शक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति, जो हमारे चारों ओर ऐसा एक ऑरा तैयार करती है जिस ऑरा के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। दूसरा कवच है दुआओं का कवच। इतना अच्छा कर्म करो जो आपके पास दुआएं इतनी अधिक हो, जो कोई आपका नुकसान करना चाहे तो भी आपका बाल बांका न कर सके, क्योंकि दुआएं आपको हमेशा बचाएगी। और तीसरा कवच है अमृत वेले परमात्मा शक्ति और सकाश का कवच। धारण कर लो तो सारा दिन आप उस कवच के अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो ये तीन कवच सदा पहन कर चलो। और उसके लिए जो नियम मर्यादाएं बताई है, ये मुख्य मुख्य मैंने तो उठाई आज समय के अभाव के कारण, लेकिन आप और भी गहराई से मंथन करेंगे तो और भी आपको जो सूक्ष्म बातें बाबा ने वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, कृति के लिए, स्वभाव के लिए, हर बात के लिए, वाणी के लिए, हर बात के लिए जो मर्यादा बताई है वो कैसे आपकी सुरक्षा कर सकता है। बाबा कई बार कहते हैं कोई बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, मुख में मुलरा डाल दो, क्योंकि बात बिगड़ती तो यहां से ही है ना। ये मुख के दो काम है, दोनों में सुरक्षा हो जाएगी। एक तो खाने पीने में जब कंट्रोल नहीं रहता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, कुछ भी खा पी लिया, ये मशीन का ये चलेगा, दृष्टि देखकर खा लो तो फंसेंगे जरूर, क्योंकि इतनी ताकत होनी चाहिए जो नेगेटिव वाइब्रेशन को समाप्त कर सको, जला सको। या तो बोलने में गुस्सा आ गया, बाबा कहते ताली बजती ही दो हाथ से है, किसी ने गुस्सा किया आपने ताली बजा दी तो फिर क्या होगा, वो भड़क उठेगा, है ना। तो इसीलिए ये दोनों ही जो बातें मुख की मर्यादा के रूप में दी है, कम बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, सोच समझ करके बोलो, तोल के बोलो, ये जो मुख के लिए मर्यादा दी है वो बाबा कहे जरूर पालन करो। और जितना उसकी पालना करते जाएंगे हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। आप अगर कलयुग के अंतिम समय में जब चारों ओर इतनी आग लगी हुई है हर प्रकार की बुराइयों की, इस आग में अगर सेफ रहना चाहते हैं तो बाबा के नियम मर्यादाओं को प्रेम से, दिल से गले लगा करके पालन करो तो सहज सेफ्टी आपकी बनी रहेगी और आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो। यही हमारी दुआएं हैं, शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी को भी बहुत बहुत दिल से दुआएं और धन्यवाद है। जो बाबा के ईश्वरीय कायदे, नियम मर्यादाएं हैं, हमें इतने सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझाए, उसका महत्व समझाया, जो हमारे लिए उसको अप्लाई करना, धारण करना सहज हो जाए, ताकि हम बाबा के सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहें। तो दीदी जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और इवनिंग का सत्र हमारा 5 बजे शुरू होगा, तो समय पे क्लास में आना यह भी एक नियम है, तो आप जरूर इस नियम का भी पालन करेंगे और समय पे हाजिर हो जाएंगे। ओम शांति। Thank you.
अपने को अब अर्पण करें, कोई आन ना अभिमान।